वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। आइए पहले सूरह फुरकान की आयत नंबर 31 की तिलावत सुनें।
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا।
और इसी तरह हमने प्रत्येक नबी के लिए अपराधियों में से एक शत्रु बनाया है, और हे पैगंबर, मार्गदर्शन और सहायता के लिए तो आपका पालनहार ही काफी है।
यह आयत ईश्वर के अंतिम दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सांत्वना देती है। ईश्वर उन्हें संबोधित करते हुए कहता है कि ये मत सोचें कि केवल आप ही को इस प्रकार के हठधर्मी एवं अवज्ञाकारी लोगों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इतिहास के सभी पैगंबरों के समक्ष भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थीं। दुष्ट व आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग उनके समक्ष खड़े हो जाते और उनके मार्ग में बाधाएं डाला करते थे। तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ईश्वर आपका सहायक व समर्थक है। वो शत्रुओं के षड्यंत्रों से आपको अवगत करके आपकी सहायता करेगा ताकि उनकी चालें विफल हो जाएं और इस्लाम दिन प्रतिदिन अधिक फैलता जाए।
मूल रूप से सही या गलत मार्ग का चयन उस अधिकार के अंतर्गत होता है जो ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान किया है और उसे अनुमति दी है कि वो जो मार्ग चाहे चुन ले। चूंकि चयन का अधिकार मनुष्य के हाथ में है, इसलिए कुछ लोग गलत मार्ग चुनते हैं, पैगंबरों के मुकाबले पर डट जाते हैं और सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते।
इस आयत से हमने सीखा कि सत्य और असत्य के बीच हमेशा टकराव होता रहा है और जब तक ये संसार है ये टकराव जारी रहेगा।
अपराध व पाप मनुष्य को सत्य के रास्ते से हटा देता है और पाप व अपराध पर आग्रह उसे पैगंबरों के विरोध एवं उनसे शत्रुता की ओर बढ़ाता है।
विरोधियों के मुकाबले में ईश्वर की असीम शक्ति पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे समर्थन व मार्गदर्शन के लिए काफी है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 32 व 33 की तिलावत सुने।
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا।
और काफिरों ने कहा कि उन पर पूरा कुरान एक ही बार में क्यों नहीं उतारा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम इसके द्वारा आपके दिल को मजबूत रखें, और हमने इस कुरान को आपके लिए ठहर ठहर कर पढ़ा है, और ये काफिर आपके पास कोई भी ऐसी उपमा आपत्ति स्वरूप नहीं लाते जिसका ठोस उत्तर और उत्तम विवरण हम आपके पास न ले आए।
काफिर और अनेकेश्वरवादी जो पैगंबर इस्लाम की बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, हर बार कोई न कोई बहाना पेश कर देते थे। कभी वे कहते थे कि वही अर्थात ईश्वरीय संदेश हमारे पास क्यों नहीं आता, तो कभी कहते कि हम फरिश्तों को क्यों नहीं देख सकते। इस आयत में उनकी इस आपत्ति का उल्लेख है कि समस्त कुरान एक ही बार में पैगंबर के पास क्यों नहीं भेजा गया, ताकि हम उससे एक ही बार में अवगत हो जाते और ये जान लेते कि मोहम्मद के ईश्वर की बातें और आदेश क्या हैं।
इन विरोधियों की बातों के उत्तर में ईश्वर कहता है कि हमने कुरान मजीद की आयतों को क्रमबद्ध ढंग से भेजा है ताकि पैगंबर स्थितियों व घटनाओं के अनुसार उन्हें लोगों के समक्ष पढ़ें तथा हर स्थिति में लोगों के दायित्वों को स्पष्ट करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी लोगों को ज्ञान व प्रशिक्षण देना है जो तुरंत नहीं बल्कि चरणबद्ध ढंग से और कुछ समय में अंजाम पाता है। पैगंबर एक करुणामयी प्रशिक्षक की तरह लोगों के साथ हैं, ताकि सभी परिस्थितियों में उन्हें सीधा मार्ग दिखाएं। वे एक लेखक की भांति नहीं है कि जो किताब लिखकर उसे लोगों के सामने पेश तो कर देता है, किंतु उसकी विषय वस्तु को लागू करना उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। पैगंबर उस शिक्षक की तरह है जो पहली कक्षा के छात्रों को केवल वर्णमाला सिखाता है, किंतु अगले वर्षों में धीरे धीरे और क्रमबद्ध ढंग से उन्हें अधिक शिक्षा प्रदान करता है।
पैगंबर ने मक्के में अनेकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा से संघर्ष किया और मदीने में परिस्थितियां अनुकूल हो जाने के बाद नमाज, रोजे और जकात जैसे आदेश लोगों तक पहुँचाए। सैद्धांतिक रूप से शिक्षा व प्रशिक्षण में जो बात ज्ञान के मजबूत होने का कारण बनती है, वो कार्यक्रम के अनुसार उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से मनुष्य के मार्गदर्शन का कार्यक्रम ईश्वर के निकट पूरी तरह से स्पष्ट, निर्धारित एवं संपूर्ण है, किंतु उसे लागू करने के चरण में एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा और जो बात उदाहरण स्वरूप 10वें साल में सीखनी है, उसे पहले साल में बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभव है कि इससे उस कार्य की ओर से लोगों का दिल हट जाए।
इसके अतिरिक्त कुरान मजीद का क्रमबद्ध ढंग से भेजा जाना ईश्वर से पैगंबर के निरंतर संपर्क का भी कारण है, जिससे अपनी पैगंबरी के दायित्वों के निर्वाह के लिए उनका संकल्प अधिक सुदृढ़ होता है। इसी प्रकार शत्रु विभिन्न अवसरों पर जो गलत एवं अनुचित बातें कहते हैं, ईश्वर कुरान मजीद की आयतों के माध्यम से उनका सटीक एवं ठोस उत्तर देकर उनके समक्ष पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को सिद्ध कर देता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि कुरान मजीद की शिक्षाएं व धर्म के आदेश धीरे धीरे और लोगों की क्षमता के अनुसार बयान किए जाने चाहिए।
जीवित व व्यापक धर्म वो है जो विभिन्न घटनाओं से निकट संपर्क रखता हो।
कुरान मजीद की तिलावत रुक रुक कर और आयतों के बारे में चिंतन के साथ होनी चाहिए।
कुरान मजीद की तिलावत कठिन परिस्थितियों में मोमिन व्यक्ति के हृदय की सुदृढ़ता व शांति का कारण है।
आइए अब सूरह फुरकान की आयत नंबर 34 की तिलावत सुने।
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا
جو لوگ اوندھے مون نرک کی اور لے جائے جائیں گے انہی کا سب سے برا ٹھکانہ ہے اور وہی سب سے ادھک پتھ بھرشت بھی ہیں
لوگ سنسار میں اپنے کرموں کے انوروپ پرلے میں لے جائے جائیں گے जो इस संसार में सत्य को नहीं देख रहा था वो प्रलय में अंधा उठाया जाएगा। जो पशुओं की भांति केवल पेट भरने और वासनाओं की पूर्ति के प्रयास में रहा करता था वो प्रलय में चौपायों की भांति पहुंचेगा। जो व्यक्ति इस संसार में सत्य की ओर से मुंह मोड़ लिया करता था और घमंड से काम लेता था उसे प्रलय में औंधे मुँह जमीन पर खींचा जाएगा और नरक में डाल दिया जाएगा।
जो लोग अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझकर ये सोचते थे कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं और ईमान वाले भोले व मूर्ख हैं, प्रलय में उन्हें पता चलेगा कि वे स्वयं सबसे पथ भ्रष्ट थे।
इस आयत से हमने सीखा कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों का अनादर प्रलय में स्वयं अपने ही अपमान का कारण बनेगा।
जब तक हम सत्य के मार्ग को न पहचान लें, हमें पता नहीं चलेगा कि हम सत्य पर हैं या पथ भ्रष्ट, और हम गंतव्य के निकट हो रहे हैं या उससे दूर होते जा रहे हैं।